इसी मदन मोहन के बारे में परिचय थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, जिनको आप दर्शन किए बीच में जो अल्टर था ना मदन मोहन जी, इनके किंवदंती ऐसा है कि ये जो मदन मोहन विग्रह आप यहाँ दर्शन करके आए, वो विग्रह आज से लगभग कई करोड़ों साल पहले स्वयंभू मन्वंतर का प्रथम सत्य युग में, अभी 27वां मन्वंतर चल रहा है, फास्ट सरकारी साइकिल जब था, ये वैवस्वत मन्वंतर प्रथम मनु के प्रथम सत्य युग में, आप नाम सुने होंगे, एक बहुत बड़े भक्त राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश महाराज, उनके द्वारा पूजित विग्रह थे वो प्रतिष्ठा करके मथुरा के राजा थे वो मथुरा में रख करके उन पूजा कर रहे थे। तभी जमाने में जैसे आजकल आपका ISBT है ना, नहीं अहमदाबाद में है ना, इंटर स्टेट बस सर्विस, बस टर्मिनस एक स्टेट से दूसरे स्टेट बस में चलता रहता है, अब कभी कभी तो ट्रेन भी इंटर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी ट्रेन बस भी चलता है प्लेन में तो चलता है, लेकिन तभी ज़माने में इंटर प्लानिटरी बस सर्विस था, एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट के लोग जाता आता करते हैं, मतलब आप स्वर्गलोक में जाओ, देवलोक में, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट था, अब यहाँ पर आ भी सकते जा सकते हैं, लोग जाना आना करते थे, तो देवता लोग भी आया करते थे, और अम्बरीश महाराज का जो प्रसिद्धि बढ़ गया दुर्वासा जी की घटना उसको पता तो है ना, वो भगवान तक गए लेकिन भगवान वापस भेज दिए उनको, तो ये घटना के बाद वो ब्रह्मा शिव वैकुंठ सब जगह में गए थे दुर्वासा जी, तो उनका रिकॉर्ड इतने बढ़ गया अम्बरीश महाराज का कि देवराज इंद्र तक आकर के उनको सम्मान करने लगे, पूजा करने लगे अम्बरीश महाराज को, और उनका तो था ही अतुल वैभव था, तो इंद्र ने आकर के उनको इतने प्रशंसा किए, तो अम्बरीश महाराज अंत में अपने जीवन का अंत में राज्य छोड़ करके पति पत्नी दोनों जंगल में हरिभजन एकांत में चले गए, और उस विग्रह की सेवा के लिए इंद्र उनको मांग लिया, बोला महाराज क्षमा करें, आप इतने वैभव से पूजा कर रहे हैं, आप चले जाएंगे, उनको कोई पूजा करेगा नहीं करेगा, हमको दे दीजिए, हम करेंगे, बहुत इच्छा। तो देवराज इंद्र उस विग्रह को मथुरा से लेकर के स्वर्ग ले गए, अमरावती में लेकर पूजा, ये जो विग्रह देखे उन्होंने, वहाँ जाकर पूजित होने लगे, और इंद्र बहुत दिन तक पूजा किया, और इंद्र का पोष तो एक मन्वंतर होता है, ए वो दूसरा चेंज हो गया, वो इंद्र का पोष्ट चेंज हो गया, एक मन्वंतर 71 चतुर्युग तक चलता है, इतने समय तक स्वर्ग में पूजा पाए उन्होंने, तो इसके बाद इंद्र की सरकार के दूसरा इंद्र आया तो शायद भक्त नहीं हुआ, जो भी हुआ पूजा नहीं हुआ, तो दूसरे कई मन्वंतर कैसे पूजा चला, तो एक बार राक्षस राज रावण ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाव किया, स्वर्ग अधिकार कर लिया देवताओं को हरा करके, तो स्वर्ग से सब आसन लूटपाट कर रहा था, लेकिन ये मदन मोहन का मंदिर देखा, उसको देख करके बड़ा प्रभावित, बोला बड़े सुंदर विग्रह है, बोला मैं भी उसकी पूजा करूँ, ब्राह्मण था तो ब्रह्मा जी के पुत्र, पंडित तो था ही बड़ा, तो उन्होंने इतने सुंदर विग्रह देख करके स्वर्ग से उनको अपना गाड़ी में लोड करके ले आया, ला के लंका में रखा, लंका में भले राक्षस है लेकिन पूजा कर रहा था, ब्राह्मण था, उनका ऐसा पूजा कर रहा था लंका, तो वहाँ पे जब भगवान राम त्रेता युग में अब लंका अभियान किए, रावण वध किए, और वहाँ कुछ रह के सीता को लेकर आ रहे थे, तब सीता माता ने भी देखी थी विग्रह को लंका में, भगवान भी देखे तो आकृष्ट होकर उनको ले चले, विभीषण राजा था, जो राजा बोलेंगे तो मना नहीं किया, राम बोले तो उनको पुष्पक विमान में लोड करके लंका से ट्रांसफ़र कहाँ कर लिए, अयोध्या में जाकर पूजा पाने लगे, कई हजार वर्ष वहाँ रहे, तो वहाँ पर पूजित होते थे, तो कुछ समय के बाद भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न, तो उनको ऋषि मुनियों ने जाकर भगवान राम को बोले कि मथुरा प्रदेश में एक राक्षस लवणासुर करके था, इसीलिए सब पानी ब्रजमन नमकीन है, वो असुर राजा था, लवण नमकीन सल्ट असुर था, लवणासुर, लवण बोलते हैं सल्ट को, वो राजनीति करता था, बड़े प्रतापशाली असुर था, बहुत तंग करता था ऋषि मुनियों को, तो जाकर प्रार्थना किए, तो भगवान राम अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भी बोले आप जाओ, तो भगवान की कृपा आशीर्वाद लेकर के शत्रुघ्न कुमार आए, जब आ रहे थे वो बोले कि प्रभु आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा, बड़े मुश्किल से तो आप चले गए थे वनवास, सभी आए मिले, आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। जब रोने लगे भगवान उनको बोले कि ब्राह्मण के ऋषियों की रक्षा करना है, लेकिन मैं आपके विरह सहन नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान राम ने इस विग्रह को उनको दी। उन पूछे थे क्या चाहिए, अगर आप साथ में नहीं रहेंगे तो इस विग्रह को दे दीजिए, उनकी उपासना करूँ तो आपके संग मुझे मिलता रहेगा, आप और ये समान है, ये कुमार शत्रुघ्न हैं। उनको मांग करके भगवान से, सीता जी सेवा कर रहे थे उनसे मांग करके, भैया भाभी से विग्रह को साथ में लेकर आए मथुरा में। मथुरा में आकर लवणासुर को बद्ध करके वहाँ अपने कैपिटल सिटी स्थापना किए, वहीं राजा बन के रहे मथुरा प्रदेश का। तो वहीं अपने मथुरा में स्थापित किए शत्रुघ्न कुमार ने, वही विग्रह को स्थापित करके फिर पूजा करने लगे, अभिन्न राम करके पूजा कर रहे थे। तो कालक्रम में त्रेता युग गया, द्वापर युग आया। वो विग्रह मथुरा में इससे विषय पड़ा था, कैसे भी कैसे एक और भक्ति आया, भक्ति न हो स्त्री थी, वो उनको सेवा का दायित्व ली। आप जानते हैं कौन है? हाँ, कुब्जा, करेक्ट, कुब्जा को प्राप्त हुआ। कुब्जा का तो कोई थे नहीं, शादीशुदा नहीं हुआ था उसका, बेचारी एक्सपर्ट थी श्रृंगार करने में, अंगराग करने में, लेकिन उसको गवर्नमेंट सर्विस तो मिली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस था, डायरेक्ट कंस का सेवा कर रही थी, अपना फ्लैट था उनका मथुरा में, लेकिन कोई थे नहीं, अकेली ही रहती थी, तो इसलिए इस विग्रह की सेवाओं करती थी मदन मोहन को। इसी कारण कृष्ण की कृपा हुआ, कृष्ण कृपा के कारण मदन मोहन विग्रह को उन्होंने सेवा की थी। तो कुब्जा जब तक रही सेवा करती रही, कुब्जा कोई थे नहीं, अकेले उम्र मिट गए, वो गए, तो काल के प्रभाव से उन्होंने वो विग्रह फिर मथुरा का राजधानी मिट गया। काल के प्रभाव मिट जाता है सब, कितने बड़े बड़े सभ्यता समृद्धि होता है फिर निबाद हो जाता है। तो मिट करके वो विग्रह मंदिर फंदिर टूट गया, जमुना जी में विग्रह बह गए, आ करके बह करके मथुरा से आगे, तो आ करके इसे भी वो जहाँ मदन मोहन मंदिर है उसका किनारे द्वादश आदित्य टीला है, वहाँ पर आ करके वो विग्रह जमुना किनारे थे। ऐसे कहीं किंवदंती है कि कहीं मथुरा में जवन आक्रमण के समय में कुछ पुजारी लोग उनको लेकर आए, कहाँ ले जाएं छिपा दें करके लेकर आए, आ करके मथुरा से थोड़ी दूर जमुना किनारे किनारे ला करके जमुना के रेत के नीचे दबा दिए, जवन दस्य के आक्रमण से बचाने के लिए। तो इस प्रकार से वो स्थानांतरित मथुरा से आ करके वृंदावन में जमुना किनारे आकर रहने लगे मदन वो विग्रह। तो इसके बाद में ये जो युग आया, द्वापर अंत में कली आता है, कली के अंतिम चरण में, प्रारंभिक चरण में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले अद्वैत आचार्य थे जिनने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराए। अद्वैत आचार्य जी जब तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो वृंदावन आए थे, वृंदावन में आकर, तो बहुत बड़े विशिष्ट भक्त थे, साक्षात महाविष्णु अवतार थे वो। तो वृंदावन में आकर जमुना किनारे भागवत पाठ कर रहे थे, भागवत से कृष्ण लीला के वर्णन सुन करके बड़े आत्मविभोर हो गए, रोने लगे, बोले हाय हाय, केवल मैं पढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ, कृष्ण दर्शन नहीं देंगे मुझे, यही जमुना है। तभी जमाने में वृंदावन की इस भाव था, कोई लोग नहीं थे, बिल्कुल जंगल था, जंगल था। तो कैसे ऐसे रो रहे थे, तब रात को स्वप्नादेश उनको हुआ, बोले अद्वैत तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो मेरे ही अंश है, मैं इधर ही हूँ। तो उनको स्वप्न में दर्शन दिए, स्वप्न में दर्शन दिए तो रात भर अद्वैत आचार्य रोने लगे, बोले आप दर्शन यही स्वप्न में, बस स्वप्न में रहेंगे? नहीं नहीं, तो जब तक वृंदावन हो मेरे सेवा करना चाहते, मेरे दिव्य विग्रह ही पास में ही है, आप आदित्य टीला के नीचे जाओ, जमुना की किनारे पे वहाँ बालू को उठाओ, वहाँ थोड़ी देर खोदने से मैं प्राप्त होंगे, वहीं मैं दबा हुआ हूँ, मुझे सेवक लोग ला कर यहाँ छिपा दिए थे, और आप मुझे उद्धार करके स्थापना करके पूजा वूजा करो। तो आदित्य स्वप्न ले कर स्वप्न देख करके जो स्थान उनको दिखाई पड़ा था आदित्य टीला के नीचे, दूसरे दिन सुबह जा करके वहाँ रेत खुदाई किए, तो ये विग्रह प्राप्त हुए। उस विग्रह को आप वृंदावन कभी जाएंगे, मदन मोहन मंदिर के थोड़े आगे जाएंगे जमुना किनारे, अभी भी स्थान है जिसको कहते हैं अद्वैत भट्ट, आप कभी दर्शन किए ना? नहीं, अद्वैत भट्ट आप दर्शन करना, मदन मोहन मंदिर का सामने है, और वहाँ अभी भी मदन गोपाल के मंदिर है, अद्वैताचार्य सेवित लिखा है उसमें। तो जब ही मदन मोहन विग्रह को प्राप्त किए थे, प्रतिष्ठा के सेवा पूजा किए, एक सेवक रखे थे, वो तो मधु कहते थे सेवा पूजा कर रहे थे ब्राह्मण को रख करके, वहीं रहे, बोले और यहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा, यहीं सेवा करूँगा, वहीं बैठ गए। तो एक दिन अद्वैताचार्य कहीं भ्रमण में गए थे, तो हमेशा दिल्ली के पास हैं, तो जवन आक्रमण का हमेशा आगरा भी बिल्कुल पास में था। तो मुसलमान का बाबर के समय में अटक हुआ, तो जो सब मंदिर तोड़ रहे थे, विग्रह तोड़ रहे थे, और उसको अटक करने आए, बाकी तो कोई मंदिर था नहीं, एक ही अद्वैताचार्य ने छोटी सी बनाए थे, और इतने सुंदर विग्रह था, उनके प्रसिद्धि सुन करके जवन दस्यु यहाँ दौड़ कर आए वो विग्रह को तोड़ने के लिए। तो कोई सेवक नहीं थे, अद्वैताचार्य नहीं थे, जो पुजारी था वो भी नहीं था, कहीं बाहर गया था, तो भगवान अकेले थे। तो क्या करेंगे, जब लोग दौड़ कर आए मंदिर तोड़ करके, अंदर विग्रह को तोड़ना चाह रहे थे, तो मदन मोहन जी स्वयं जो उनके पुष्प सब रखा हुआ था, जो बासी पुष्प होता ना वो रखते हैं, 7-8 दिन के बाद जमुना में जा करके बहा देते हैं, और जो प्रसादी फूल होता था फूलमाला, तो फूल पड़ा हुआ था, तो मदन मोहन जी अपने को छोटा कर दिए, एक गोपाल विग्रह बन गए, छोटी सी गोपाल बन करके ये फूलों के अंदर जाके छिप गए। वो लोग आए, जवन दस्यु मंदिर तोड़ कर ढूंढे फिरे, मिले नहीं, चले गए, बोले है ही नहीं मंदिर, तो पता नहीं कोई ले गए, ढूंढ कर गए, मिला नहीं, चले गए। चले जाने के बाद शाम को सेवक आया, आकर देखा कि अल्टर खाली, द्वार तोड़ा, बोले अरे ले गए, तोड़ दिए, फेंक दिए, क्या किया होंगे, बहुत रोने लगा, क्या करूँ मैं नहीं रह पाया, चला गया। तो अद्वैताचार्य भी आए ब्राह्मण से, आके देखे कि है ही नहीं, तो भी रोने लगे। सेवक को पूछे, सेवक बोला ऐसे ऐसे है ठाकुर जी, पता नहीं दस्यु लोग आए थे, लेकर गए, तोड़ दिए, कुछ किए। तो दुख में दोनों सेवक और अद्वैताचार्य दोनों रात भर रोते रहे। तो रात को फिर स्वप्न में आए मदन मोहन, अद्वैत बोले नहीं मैं नहीं गया हूँ, मैं तो छिप गया था, मैं हूँ इधर ना, कहाँ छिपे ना, वो फूल है ना प्रसादी फूल जहाँ पड़ा है उनके अंदर बैठा हूँ, उन्हें अब मुझे उठा, मैं दिन भर खाया नहीं, कुछ भोग नहीं लगा, कुछ व्यवस्था करो। तो अद्वैताचार्य रात आध में उठ करके जाकर फूल उठा दे, उनको छोटी सी गोपाल मूर्ति रूप में है, तो उनको उठा के ला कर पानी वानी पिलाए और रखे। फिर ब्राह्मण को बोले कि ये सब आते वो हैं, लेकिन अपने स्वरूप छिपा कर थे, तो वे उनको सेवा पूजा की व्यवस्था करो। सेवक तो घर चला गया था, उनको बुला के लाए, तो बोले अब इसी रूप में रहेंगे ना? नहीं 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 मैं मेरे रूप में रहूँगा, इस रूप में क्या, ये तो छिप गया था वो क्या। तो दूसरे दिन सुबह जो सेवक को बुला करके आए मंदिर में, आके देखे जैसे थे ऐसे ही फिर अपने स्वरूप में आ गए, लेकिन उनका नाम अभी चेंज हो गया, बोले आप गोपाल बने थे, अभी तो मदन मोहन नहीं, मदन गोपाल नाम रहेगा। तो उनको बोलने लगे क्या मदन गोपाल, बोले स्वयं आपने गोपाल बने, हम थोड़ी नाम दिए, आप ही आपने मदन गोपाल बने हैं। तो मदन गोपाल के रूप में अद्वैत आचार्य के द्वारा सेवित हो रहे थे अद्वैत भट्ट में, आज भी स्थान है, अपने नाम जाएंगे तो देखेंगे, जमुना किनारे जस्ट, तो वहाँ सेवित हो रहे थे। तो लेकिन बार बार मथुरा से आगरा से जवन लोगों का मुसलमान का अटक हो रहा था, बार बार कभी छिपाना पड़े, ये कर रहे वो करना पड़े, तो अद्वैताचार्य बड़े चिंतित थे, और उनको भी जाना था, महाप्रभु के प्रकट होने का समय उनको जाना था नवदीप में। तो मदन मोहन को बोले देखो अद्वैत जी, आओ यहाँ भी परेशान आप भी हो, आपको भी जाना है, मुझे भी परेशान मत करो, सेवक भी परेशान होता, ऐसा करो मुझे सिटी में भेज दो, यहाँ तो कोई घर बार नहीं, जंगल में कोई आते हैं अटैक करते हैं, यहाँ एक बड़े मेरे भक्त है, बहुत मेरे निज जन है, उनका नाम है दामोदर चतुर्वेदी करके ब्राह्मण है, वो आएगा कल और उनको मुझे दे देना, वो सेवा करेगा, वो अपना आदमी है जाना का, वो सेवा करेगा। तो अद्वैताचार्य रोने लगे, वो आपको छोड़ करके, नहीं नहीं आपको काम में जाना है भाई, उनको दे देना जाना, तुम क्यों चिंता, तुम जाओ उनको दे देना। और दूसरे दिन दामोदर चतुर्वेदी मथुरा के ब्राह्मण चतुर्वेदी ब्राह्मण आए, आकर ढूंढ ढूंढ कर पहुँचे, बोले मुझे स्वप्न आदेश हुआ है, आपके पास विग्रह है मुझे दे दीजिए, मैं सेवा करूँगा। तो देना ही पड़ा, और दोनों को नोटिस आ चुका है, तो इसी विग्रह को दामोदर चतुर्वेदी को दिए, उन्होंने ले करके मथुरा में अपना घर में रह करके, चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, सेवा पूजा करने लगे। तो सेवा पूजा कर रहे थे, तो कुछ वर्षों बीत जाने के बाद में जब सनातन गोस्वामी पाद प्रथम बार वृंदावन आए, तब वो दामोदर चतुर्वेदी तो यंग थे जब लिए थे, अभी तो वृद्ध हो चुके हैं, कभी 30-40 साल बीत चुका है, अब महाप्रभु के प्रकट होकर के महाप्रभु संन्यास लेने से समय में, उनको पहले से संन्यास लेकर के जब वृंदावन से आने से पहले सनातन को मिले, उनको ये आदेश दिए थे कि वृंदावन में जा करके विग्रह स्थापना ग्रंथ प्रणयन आदि करने के लिए, तो तो सनातन आए थे रूप गोस्वामी चले जाकर वृंदावन में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनको एक बार ऐसे कहते हैं कि गोकुल में रहते थे कुछ दिन, तो वहाँ एक दिन शाम के समय में कुछ लोग गाय चरा करके समाते हैं शाम के समय, तो उनको देख रहे थे कितने सुंदर गोधुली समय गाय बछड़े जा रहे हैं उनके पीछे ग्वाल वाल जा रहे हैं, तो उनमें से एक था ये मदन मोहन था ग्वाल के वाले कोई नहीं पहचानते थे उनको, वो जा रहा था उनमें, तो उसको देख करके सनातन गोस्वामी बड़े आकृष्ट हुए। बोले क्या मैं महाविरक्त हूँ, ये छोटे लड़के के प्रति मेरा मन इतना क्यों आसक्त होता है, इतने आसक्त है उनके पीछे पीछे गए जा रहे थे सब अपना अपना घर में गए तो उनका पीछे पीछे तो जा रहे थे। बोले वो जाता हूँ किसका घर में जाता है, वो मंदिर में गया, एक मंदिर था मंदिर में गया। बोले अच्छा तो मंदिर में, तो मंदिर में जाके प्रतिदिन दर्शन कर रहे थे लेकिन मंदिर में नहीं, मंदिर में जा रहे थे दर्शन कर रहे थे लेकिन उनको भिक्षा करने के लिए सिटी में जाना पड़ता था मथुरा नगर में। जब मथुरा भिक्षा करने गए तो भिक्षा करते करते एक दिन चतुर्वेदी का घर में गए थे, उनका घर में भिक्षा क्या दें नज़र पड़ गया ठाकुर जी के ऊपर। बोले यही तो है, और भिक्षा क्या लें, उनको देखने लगे ठाकुर जी, उनको देखने लगे, उनको देखने लगे, दोनों दोनों को देखने लगे। आप डेली डेली मथुरा भिक्षा के लिए गए, पहले तो हफ्ता दिन में जाते थे जो मिल जाता था तीन चार दिन खाते थे, डेली डेली भिक्षा नहीं करते थे, उनको दो रोटी खाना था और क्या है, इतना कोई ऐस नहीं करना था, हाँ दिन में चार बार भजन तो करते नहीं थे, वैरागी थे, तो इसलिए एक दिन भिक्षा करने के बाद तीन चार दिन काम चलता था। लेकिन अभी डेली डेली भिक्षा करने गए और वृंदावन से चल करके मथुरा जाते थे, 15 किलोमीटर रास्ता एवरीडे, लेकिन भिक्षा का इच्छा नहीं था। क्या था इच्छा, उनको देखने के लिए, वो लगाव लग गया वहाँ, डेली देखने जाते थे। एक दिन जाकर देखे, जाकर खड़े रहते थे घंटे, तो चुप छिप कर खड़े रहते थे, उनको ना पता चले मैं देखने आ रहा हूँ। तो मदन मोहन जी वो उनका एक बेटा था छोटा, उनका नाम था सदन, वो बेटा के साथ खेलते थे, ऐसे खेलते थे दोनों भाई मिल करके, और दोनों बैठ कर खाते थे, और वो चूबे की पत्नी बल्लभा देवी वो उनको खिलाती थी, कभी कभी उनको खिलाती थी, उनसे छुटा ला कर उनको खिला देती थी। मदन मोहन पागल, अरे साक्षात कृष्ण है, ये उनके बेटा का झूठा उनको खिला दिया, उनको सनातन गोस्वामी को ला ये क्या कर रही भाई, वो जानता नहीं कौन है, तो उनको बड़ा शौक हुआ। और खा पी के जब चले गए तो वो बाबा आप रोटी तो दिया था नहीं, नहीं रोटी तो मैं लिया लेकिन मैया एक बात है, बोले तुम्हारा जो दो बेटा है ना, ये तुम्हारा दो बेटा नहीं, नहीं मेरा दो, एक तो ठाकुर जी है एक मेरा बेटा है, वो दोनों खेलते रहते हैं, इतने सहज भाव से थे उनके। बोला लेकिन मैया तुझे पता है ठाकुर जी तेरे बेटा है लेकिन समान कैसे, ना मैं तो ऐसे करती हूँ, नहीं वो तो परमेश्वर कृष्ण है, उनको तुम झूठा खिला दिया, मैं देखा ना बाबा मैं तो डेली खिलाती हूँ, वो ऐसे ही दोनों बैठते हैं, दोनों नटखटे हैं खाते भी, ऐसे भी करते रहते हैं खाते खिलाती मैंने। बोले ये तो ठीक नहीं है, ये तो अपराध है। तो बल्लभा देवी बोली बाबा मुझे तो पता नहीं था, मैं तो ऐसा करूं मुझे पता नहीं। बोले नहीं ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह सेवा पूजा करो, उनके प्रसाद बाकी सब पाओ, ऐसे थोड़ी उनको पहले झूठा खिला दो। बोले बाबा मुझे पता नहीं था, गड़बड़ हो गया, कल से ऐसे करूं। आप दूसरे दिन से उठ करके स्नान, पहले तो स्नान टन बिना किए बिना नहाए कुछ दूध पिला दी उनको, कुछ कर दिए, छोटा बच्चा है ना उनको नहान करके खिला गए, और सनातन को सब बता दिए नियम, स्नान करके तिलक चित्ता करे, अब तब जा कर कुछ बनाए, तुलसी पतला भोग लगाने लिए, अब रूठ गए मदन मोहन नहीं खा रहे। बोले मैया क्या हो गया मुझे, आजकल तू ऐसा कर रहा है, मुझे अपना बेटा नहीं मान रहा है। नारे बाबा आया था उस दिन मुझे डांट दी, बाबा ने बोला तू क्या समझ रहा ठाकुर है ना, अच्छा बाबा की बात में आकर तू मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है, मुझे तो पहले मुझे ऐसा था अच्छा था, ऐसा क्यों कर रहा है। तो दूसरे दिन जब फिर बाबा आए तो ब्रज माया ने उनको बल्लभा देवी ने बोले कि वो नाराज है खा नहीं रहा है ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो सनातन को समय आपने को दोष लगा, क्षमा प्रार्थना की, बोले मुझे पता नहीं था आपके क्या भाव उनके प्रति, उनके क्या भाव आपके प्रति, मैं समझा नहीं था, गलती हो गया, अब नहीं आऊँगा कल से। बड़े रो रो कर वापस है, बोले एक तो मैं गया, एक तो सेवा तो नहीं किया हूँ, भजन नहीं पक्का नहीं हुआ है, अपराध कर दिया, बैठ कर जा। अब बड़े आकर दुखी हुए, खाए पिए नहीं, मांगे नहीं, एक दिन भिक्षा के नहीं गए, खाए नहीं। दूसरे दिन रात को मदन मोहन स्वप्न आए, बोले क्यों रो रहा है। मैं तो नाटक इसलिए किया था, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं उनका पास थोड़ी देना चाहता हूँ, वो क्या जानते पूजा वो कर रही है ठीक, मैं ऐसे बूढ़ी हो गया है, मैं तो आपके ताक में था, कब सनातन आएगा मैं उनके साथ जाऊँगा, तू मुझे लेकर आ जाना, तू मुझे लेकर आ, मैं तेरे पास रहना चाहता बाबा, मैं तुझे तभी देखा दिया था, तभी दर्शन दिया था, मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ, तू मुझे लेकर आओ। तो सनातन बोले तू मेरे पास आएगा, पता है मैं पेड़ के नीचे रहता हूँ, मेरे झोंपड़ी भी नहीं है, बोले तू रहता मैं भी रह जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं भी तो वनचारी हूँ, वनवाली हूँ, जंगल में रहने वाली हूँ, और क्या मेरा कौन सा गया होता, मैं भी भाई चराने वाला हूँ, जंगल में रह जाऊँगा तेरे साथ, लेकिन मेरा खाना पीना भिक्षा में कोई बात नहीं, जो तू खाता है मुझे देना वही खा लेंगे दोनों मिलकर, मैं तो तेरे साथ रहूँगा। तो इसे भगवान ने बोले, केवल सनातन को नहीं बोले, इधर शोभे पत्नी को भी बोले स्वप्न में कि मैया अब तू बूढ़ी हो गया है, अब तू बहुत से नियम कानून कर रहे, तेरे से बन नहीं रहा है, तो आवाज़ भी आ रहा है, उनको दे देना मुझे, मैं उनके साथ जाऊँगा। अड़ गए, मैं तो उनके मुझे दे देना उनके साथ, मुझे दे देना, मैं उनके साथ जाऊँगा। तो मैया बोला तू मेरे पास नहीं, नहीं तेरे पास नहीं रहूँगा, मैं तो उनके साथ जाऊँगा। बोला ठीक है, कल आएगा ना मुझे दे देना, उनको भी बता दिया मुझे दे देना, उनको बोले तुम लेकर आना। सनातन गोस्वामी आज सुबह निकले, चलते समय हर पग में उनके बड़े उत्साह उमंग था कि आज प्रभु को लेकर आएंगे। जितने मन में आनंद उल्लास होता है ऐसे रोते आनंद में जाते हैं, लेकिन इतने भी चिंता होते प्रभु को लेकर आऊँगा कैसी सेवा करूँगा, मेरे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मैं थोड़ी चाहता तो वही खुद आना चाहता है, वही आपने संभालेगा, मैं क्या करूँ, मैं तो कंगाल हूँ, सेवक हूँ उनका, अब वही खुद आना चाहता है, मैं तो बुलाया नहीं था, अब वो जाने। तो इस प्रकार चलो मेरे तो सौभाग्य है, उनके दर्शन उनके सेवा का सौभाग्य मुझे मिलेगा, जितने सुख इतने दुख में, दोनों शोक और सुख में मिल करके गए। और जैसे पहुंचे चुबे की पत्नी तो अल्टर से उठाकर गेट पर बैठा था उनको लेकर, विग्रह बोला कब आएगा बाबा लेकर जाए, वो अड़ करके बैठा है, टेंशन मुझे दे रहा है। जैसे बाबा बोला बाबा तू लेकर संभालो भाई, मेरे नहीं बनेगा, तुम लेकर जाओ, काल से झगड़ रहे मेरे से, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, तुम लेकर जाओ उसको। तो सनातन जी के हृदय गदगद हो गया, बोले जो इतने वात्सल्य भाव से इस प्रकार यहाँ रहता था, आज मेरे पास आने के लिए इतने अड़ गया कि उनको बिल्कुल गेट में ले बैठा है, लेके जाओ हम नहीं रखेंगे उसको। तो भगवान के भक्त के पास आने के लिए इतने जो उनका चिंता है, इतने इच्छा है, इतने प्रयास है, इतने चेष्टा देख करके सनातन को बड़े हुआ उनको। तो उनको लेकर आए, कैसे लाएंगे, कोई गाड़ी तो था नहीं कि सवारी था नहीं उठा के लाएंगे, वृद्ध सनातन थे, इतने बड़े भारी विग्रह देखा ना कितने बड़ी, सनातन थे यंग थे, तो उठा करके कंधे में, कभी सर में कभी कंधे में उठा कर लेकर आए, बड़ी भारी था, जमुना पार करना था, जमुना ब्रिज नहीं था, तब कैसे ला कर रहे, बोले इतने भारी तो उठा कर, बोले कोई नहीं मैं लाइट हो जाता हूँ। तो भगवान ने लाइट हो गए, जैसे अपने छोटे बालक को लेकर के माँ चलती तो वेट ज़्यादा महसूस नहीं होता, इस प्रकार सनातन जी इस मदन मोहन विग्रह को लेकर के आए। वो आ करके यमुना किनारे अपने पेड़ के नीचे वहीं बैठते थे, वहीं पेड़ के नीचे ला कर रख दिए, पत्थर रखे, पत्थर के ऊपर बैठा दे, बोले देखो वहीं रहना पड़ेगा, मेरे कुछ है नहीं, झोपड़ी भी नहीं, ना कोई बात नहीं, रहेंगे तेरे साथ रहूँगा, लेकिन रहते थे उनके साथ में। अब तो सनातन गुरु डेली भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक थे दो हो गए, परिवार में एक आदमी बढ़ गया, उनको देख भर कर लें, और जो परिवार में बढ़ा वो तो भाई बात भी नहीं करता है, चलता नहीं, फिरता नहीं, घूंगे बहरा है, वो तो उनको तो मेंटेनेंस खुद करना पड़ेगा, है ना नहीं। जैसे किसी को कोई पुत्र प्राप्त हो जाए तो चल फिर ना सके, बोल ना सके, तो उनके लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान, व्हील चेयर तो था नहीं तभी, लेकिन बैठा रह लेंगे, बोले बैठा मुझे अकेले आ रहा हूँ कुछ खिलाऊँ। तो डेली जाते थे तो किसका घर से बनी बनाई पदार्थ नहीं लाते थे, ये देखिए ये आजकल लोगों का हम सोचते हैं जो मधुकरी है हम जाकर रोटी सब्जी लाकर खा लेते हैं, बोले नहीं गोस्वामी लोग रोटी सब्जी नहीं लाते थे। स्थूल व्याख्या करे, स्थूल व्याख्या मतलब आटा मांग कर लाते थे, आटा मांग कर लाते, रोटी नहीं मांगते थे, क्योंकि किसका घर का कर्म नहीं लाएंगे, आटा मांग कर लाएंगे, ला करके जमुना के पानी मिला करके उसको क्या बनाते हैं, आटा पानी जो भी बना करके, वो गोबर के कंडा जला करके उसी में सेक करके अब बस दो टिकट बनाएंगे और इसी को भोग लगाते थे, उसी को खाते थे, उन्हीं को भोग लगा, बोले उसी को खाना पड़ेगा, अब अनकंडीशनल जब बोले हैं तो वही खा के रहूँगा तो वही खाए, हफ्ता दिन इसी को खा के रहे मदन मोहन जी, इसी खाते थे वो डेली वही भोजन में, कोई नेक्स्ट आइटम नहीं, कुछ सब्जी फब्जी तो आती नहीं, सूखा और वो तो सात दिन, एक हफ्ता के बाद एक दिन मदन मोहन जी बोले सनातन वो सब्जी फब्जी का तो मैं आशा नहीं करता, तेरे पास है नहीं तो क्या देगा, अरे कम से कम थोड़ा नमक तो दे दो, ये अलोनी रोटी वो, 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 गला में नहीं उतरता, हाँ थोड़ा नमक भी दे दो, इसे ऐसे कच्चा मच्चा देता है, थोड़ा नमक साथ में हो जाए तो खा लूँ। तो सनातन को समझ, देखो मैं तो भिखारी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से नमक लाऊँ, अभी तू आज नमक मांगता है कल चीनी मांगेगा, मैं कहाँ से ला कर दूँ भिखारी, ना रे यार मुझे तो पास में लेकर रखा तो खिलाने तो व्यवस्था तो करना, नहीं व्यवस्था में जो कर रहा हूँ, जो कर पाऊँ यही कर रहा हूँ, तुझे नमक चाहिए तू तेरा व्यवस्था कर लेना, मैं कर लूँ, तू अगर परमिशन दे मैं कर दूँ, ना करो आपको चाहिए तो हम करो आप कर लो। तो उसी दिन दोपहर को पंजाब से, तभी जमाने में तो रोड सब था नहीं, तो जो भी बड़े बड़े व्यापारी बिजनेस करते थे सब जलपथ में होता था, जलपथ में बड़े बड़े नौका बड़े बड़े पोत में बहुत सारे सामग्री लेकर के एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो बिजनेस हुआ करके लाते थे। तो एक कपूर थे वो पंजाब साइड के, उन्होंने पंजाब से जमुना के मार्ग में बहुत बड़े नौका में कई प्रकार के सामान लेकर लोड करके जाते थे, वो आगरा लिसड़ी सड़ जाकर उनको बिजनेस करना था, और वृंदावन तो ऐसे निर्जन जंगल था, तो वहीं पे द्वादश सत्य टीला के किनारे जमुना में वो बोट फंस गया उनका, लोडेड बोट, कई लाखों कीमत के उनके सामग्री लोड है बिजनेस का सामान, और वो फंस गया कैसे, कई बार उस रास्ते में गए लेकिन इस बार कैसे फंस गया, कितने प्रयास किए कितने प्रयास किए और नौका चला ही नहीं, तो वो दुखी हो गए, बोले रात होने से पहले अगर नहीं निकलता है यहाँ तो सदस्यों के आडा है, चोर आएंगे मार पीट कर सारे हो जाएगा, बड़े रोध हो करके चिल्ला करके, और जो कोई उपाय बिल्कुल शून्य हो जाता है तो ये भगवान याद आते हैं ना, नहीं तो भगवान याद आए तो वो तैर करके छोटे यमुना किनारे आ करके खूब रोते रोते प्रार्थना, क्या क्या करूँ प्रभु बचाओ, आज तो सर्वस्व लूट हो जाएगा, मर भी जाऊँगे बचेगा कि नहीं पता नहीं, नौका फंस गया आगे नहीं चलता, तो देखे कि कोई नहीं था निर्जन, एक लड़का घूम रहा था सांवला सा लड़का, तो उन्होंने बेटा कोई है क्या मदद कर सकता था, मैं क्या मदद करूँ ना, मेरे बड़े दुख बहुत दुखी हो करके उनको बोले, बोले मैं ना कुछ कर सकूँ, और बाबा बैठा है वो सुझा, बोलो मदद करेगा आपका, बोले कहाँ बैठा है ना, ऊपर में टीला बैठा है बाबा, पेड़ के नीचे देखना बैठा है वो, उसको जाकर बोलो। तो ऊपर चढ़ के गया, टीला बहुत था ऊँचा, उसमें जाकर देखा पेड़ के नीचे सनातन गोस्वामी बैठ के भजन कर रहे थे, जाके प्रणाम किया, बोला बाबा ऐसा है और आप ऐसे ऐसे फंसा है, प्लीज़ हेल्प करो, थोड़ा मदद कुछ कर दो, आप महात्मा है। बोले मैं क्या कर सकूँ, मैं देखो मैं बैठा मेरे क्या क्या आप कर सके, ना नहीं ना तू मेरे पास क्यों आ गया, ना वो उन्होंने भेजा ना किसने भेजा, ना वो लड़का कौन सा लड़का, ना सामान सा लड़का घूम रहा था, मैं उनको पूछा तो बोला बाबा के पास जाओ वो कर देगा, आप मना कर रहे हो ना, अच्छा उन्होंने भेजा ना, हाँ ना उन्होंने भेजा तो फिर कर देगा और क्या है, फिर जाओ। बोला क्या जाऊँ ना, वो बोला तो जब हो जाएगा तो जाओ जा कर देखो ना, और जा कर देखे नौका चल पड़ा था, कोई प्रयास नहीं हुआ था नौका चल पड़ा था, तो इतने नौका में जाना पड़ा उनको, फिर वापस नहीं आया, लेकिन मन में संकल्प किया, बोला ये बाबा जी कितने बड़े सिद्ध महात्मा है, वो कुछ भी नहीं किया, बोल रहा जाओ करके ही नौका अपने आप खुल गया, तो कितने बड़े सिद्ध महात्मा है मैं पहचान नहीं पाया, इस बार मेरा बिजनेस में जो भी मुनाफा होगा कि जो भी कुछ होगा सर्वस्व उनको लेकर भेंट दे दूंगा, उनके सेवा करूंगा, यही से बड़े सिद्ध महापुरुष है। तो इस बार गया था और केवल आगरा में ही गया, उनके सारे माल बिक गया और सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ इस बार, तो बड़े खुश हुआ, वापस आ करके इसी टीला के पास फिर रोक करके वापस आया, फिर बाबा को मिला, बोला बाबा आप पुराना मन में तो समझ गया, तो कुछ भी गाली दो डांटो मैं तो आपके सेवा करूंगा, ये सारे इस बार के सारे सामान तेरा है बता। बोला तू पागल मुझे मत करो, वो तो नहीं जानता है सनातन गोस्वामी तो इतने बड़े मंत्री थे, उनका कितने संपत्ति था हिसाब नहीं है, वो क्या धन के पीछे पड़े हैं, उनको नहीं बोला मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं बाबा नहीं नहीं मुझे मत करो, मैं तो कुछ सेवा करना चाहता हूँ कृपा करो। बोले देखो मैंने नहीं किया, वो लड़का ने किया था, वो लड़का क्या उसको ज़रूरत है मुझे, मैं जानता हूँ उनको ज़रूरत है इसीलिए उसको किया काम, तो उसको जरूरत है कोरोना, क्या करूं? ना उनको नमक का जरूरत है, नमक नमक तो नमक बीमारी, नमक बीमारी तो हूँ मैंने, नहीं नहीं बोले बोले ठीक है, खाली पड़ा है, कोई झोपड़ी नहीं, घर नहीं, उसको बना दो, घर पर बना दो, उनका व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने इतने संपत्ति तभी जमाने का संपत्ति लगा करके लाल पत्थर के राजस्थान से मंगा करके मंदिर निर्माण, सबसे प्रथम मंदिर निर्माण हुआ था मदन मोहन मंदिर, उन्होंने कपूर साहब ने बनाए, बना करके उसमें मदन मोहन को प्रतिष्ठा किए। तो बोले अब ना प्रतिष्ठा मंदिर में लगाया तो पूजा सेवा की प्रतिष्ठा करो, तब तो ब्यांग फैंक था नहीं, एफडी फिफ्टी करने का व्यवस्था नहीं था, तो उन्होंने कुछ व्यवस्था किया, कुछ लोगों को ला करके सेवक रखा और प्रतिदिन राजभोग की व्यवस्था करके गया। केवल नमक क्या, हर प्रकार का आइटम भोग लगने लगा, डेली डेली व्यवस्था कर दिया, सारे व्यवस्था कर दिया कि उनको मंदिर भी और पुजारी भी और सभी सेवा की व्यवस्था हो गया। तब सनातन गोस्वामी जाके दर्शन किए, प्रतिष्ठा करके बोले ठीक है, आप तो अपना व्यवस्था कर लिया, अब मुझे विदा दो। हैं तू के ना, मैं तेरे साथ अब रहने के लायक नहीं हूँ, तू तो राजा के थाट बाट में रहने लगा, इतना बड़े भव्य मंदिर है पैलेस, और अब खान पान का आपके सेवक आ गए और तीन टाइम भोग लगता है बड़े राज थाट बाट में, मैं तो भिखारी, मुझे भिखारी रहने दो, मैं अगर भोग करूँगा तेरे सेवा कौन करेगा, तू मुझे जिसने भेजा है तो मैं तो भिखारी रहने दो मुझे, मैं ये सब ऐश करूँगा तो मैं फिर अपने धर्म नहीं रख पाऊँगा। तो बोला कभी कभी तो आना आएंगा ना, नहीं हाँ बीच बीच में आऊँगा देखने के लिए। तो बोले ठीक है जा, ओके ओके। तो बोले लेकिन मेरा एड्रेस में क्या रब तेरा रहेगा, है ना, मेरे पास कोई हन जाएगा ना सनातन गोस्वामी का, ये क्या रब तेरा रहेगा ना, ठीक है मेरा एड्रेस रहेगा, मैं जा रहा हूँ आप अपने सेवा। तो मदन मोहन जी अपने सेवा को व्यवस्था कर दिए, सनातन गोस्वामी उनको छोड़ करके चले गए नंदगांव, नंदगांव जाकर भजन करने लगे, वो भी क्या करके रहने लगे, वहाँ भी जाकर वहाँ भी पहुँचे, वहाँ से छोड़ के चले गए सनातन से, वृद्ध हो गए, नंदगांव छोड़ कर बोले यहाँ भी पीछे पड़ा आकर दूध देने लगा, ये देने लगा, तो वहाँ से चल गए गोवर्धन, वृद्ध अवस्था था, गोवर्धन में जा करके इतने भगवान की आदास्त आया, तो बोले मैं इस गोवर्धन वास करूँगा। तो गोवर्धन के किनारे मानसी गंगा के पास में वहीं रहे और नित्य प्रति गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, नियम था, बूढ़े उम्र था कर नहीं पाते थे, लेकिन नित्य प्रति करते, मानसी गंगा स्नान करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, आएंगे, शाम हो जाता था जो मिलता था खाते थे, नहीं तो नहीं, उपवास वही रहते थे। चकलेश्वर मंदिर है उसके पास में सनातन गोस्वामी रहते थे। तो बारिश के समय आया, बड़े मच्छर काटे, बोले यहाँ रहा नहीं जाएगा, बड़े मच्छर तंग करते हैं। तो दूसरे दिन सुबह अपना बुढ़िया, तो बेडिंग तो था नहीं, एक कम्बल था सोने के लिए, उसको बिछाए उठाए, बोले जाता हूँ दूसरी जगह कहीं। तो भगवान शिव जी प्रकट हुए उनके सामने चक्र से, बोले सनातन क्यों चले जा रहे हैं, ना मच्छर तंग कर रहे हैं मनीर, ना मैंने मच्छरदानी की व्यवस्था करूँगा, आप रहो इधर, मैं तेरा संग में रहना चाहता हूँ। तो आज भी लोग बोलते हैं शिव जी का व्यवस्था से वहाँ मच्छर नहीं जाते, चारों तरफ मच्छर काटते, उनके पास में नहीं। तो सनातन यही रहे, नित्य प्रति गोवर्धन परिक्रमा करते थे, इतनी उम्र हो गया चल नहीं पाते थे, कभी कभी चलते चलते गिर पड़ते थे। तभी जमाने में गोवर्धन का परिक्रमा 40 किलोमीटर था, आजकल तो 20 किलोमीटर हो गया, आधा कम हो गया, तभी इतने बड़ी परिक्रमा था। तो फिर भी चलते थे, कभी कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते थे धूप में, तब एक बालक आकर उठाता था, बाबा बहुत ढीठ हो, तो टेढ़ी हो, क्यों चल रहा है, अब बूढ़े हो गए जाओ, अब तेरे से नहीं हो रहा है, नहीं 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 मेरा तो जीवन का संकल्प है, मैं करते रहूँगा, कितने समझाते नहीं मान रहा था, वो नहीं समझते थे, बोले कहूँ मैं तो लोकल हूँ यहीं को, तो क्यों ऐसा कष्ट कर रहा है। अब कुछ दिन के बाद दोबारा जो मूर्छित होकर गिर पड़े, वो आकर उनको उठाया, जिद करके बोला कि तुम ऐसा मत करो, तुम जाओ ना, नहीं नहीं रोने लगे, तुम कौन हो, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मेरे जीवन में संकल्प में यही करते रहूँगा, ना ठीक है तो संकल्प या नहीं करो, यही करते रहोगा तो मैं तेरी व्यवस्था कर देता हूँ, तो परिक्रमा में हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे इतना 40 किलोमीटर चल मत, ना तुम कौन हो, ना मैं तो तुम्हारा ही हूँ, भूल गया, तो आपने स्वरूप दिखाया उनको, वही मदन मोहन थे, उनके पीछा नहीं छोड़ते थे, वहीं पे गोवर्धन किनारे उनको दर्शन दिए, बोले फिर कैसे करूँ परिक्रमा करने का संकल्प, मैं व्यवस्था करता हूँ, एक पत्थर ले लिए, उनके ऊपर पैर रख दिए, बाम पदचिन्ह रखे और बिल्कुल स्टाम्प उभर आया, पदचिन्ह उसमें दिखाई पड़ा, बांसुरी चिन्ह पदचिन्ह बिल्कुल आ गया, बोले इस पत्थर को ले लो, वो उसी को परिक्रमा कर लेना, हो गया गोवर्धन पर, ए मैं रिकमेंड कर दिया स्टाम्प, तो इस पत्थर को सर में लेकर के आए और अपने पास रखे और प्रतिदिन उसी की परिक्रमा कर ले, छोटी छोटी पत्थर था, उसको परिक्रमा दो चार बार करते थे, प्रणाम करते थे वृद्धावस्था में। जब व्यास पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी की अपरकट तिथि है, ब्रज में उसको मुड़िया पूर्णिमा करके प्रसिद्ध है। मुड़िया पूर्णिमा इसलिए कहते हैं, सब मुंडन करते हैं कि सनातन गोस्वामी सब ढेर वाले थे, बाल नहीं देखे दाढ़ी वाले, तो इसलिए समस्त ब्रजवासी जा करके उस दिन मुंडन करते हैं, मान सिंगा स्नान करके सनातन गोस्वामी के सम्मान के लिए परिक्रमा करते हैं गोवर्धन के। आज भी लाखों की संख्या में भीड़ होता है मुड़िया पूर्णिमा के दिन, उन्हीं के दिन था। तो बाद में रूप गोस्वामी को पता चला भाई साहब के अप्रकट हो गया है, तो उनको जा करके गोवर्धन से कीर्तन करके लेकर आए, वो शिला को भी लेकर आए, ला करके फिर उनको समाधि हुआ था मदन मोहन मंदिर के पीछे, सनातन गोस्वामी की समाधि है वहीं रखे। और शिला को रूप गोस्वामी से फिर रख करके गोविंद मंदिर में पूजा कर रहे थे। रूप गोस्वामी के अप्रकट के बाद उनके भतीजा उनके शिष्य अजीब गोस्वामी इसको लेकर के आपने पूजित विग्रह दामोदर मंदिर में रख करके सेवा की। बोले ये ठाकुर जी का डायरेक्ट मेरे गुरु जी मेरे दादा गुरु के सेवित वही शिला है, भगवान ने आपने पद छिप दिए हैं। तो उनको रख करके दामोदर मंदिर के सामने पूजा कर रहे थे। बाद में जब मुगल आक्रमण के कारण सर विग्रह स्थानांतरित हुए, तो उस समय में वो सब स्थानांतरित हुए थे, दामोदर विग्रह भी आ गए थे। कल आप दामोदर शिला देखें, अपने दामोदर मंदिर में देखे ना अपने शिला पद साहब, वही शिला वो भी यहाँ चले आए थे ट्रांसफ़र होकर के। तो इस प्रकार से सारे विग्रह फिर राजस्थान जय सिंह राजा थे उन्होंने ले आए थे। तो इस प्रकार किंवदंती है कि राजा ने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और दामोदर विनोदीलाल ये सारे विग्रह को जितने हो सके लेकर आया था। केवल बल्लभा संप्रदाय के लोग वो गोपाल जी को ले गए थे मथुरा से उदयपुर, वहाँ लेकर रखे नाथ द्वारा में, बाकी जितने विग्रह को ले आए थे सब माधव जितने विग्रह था जय सिंह जी ने मंगलाटकर को ले आकर के वहाँ रखे राजभवन में। तो वो जय सिंह जी के एक बेटी थे राजकुमारी, वो इस विग्रह को देखा, उस विग्रह से एक विग्रह की बहुत उनको पसंद आई और प्रतिदिन आकर के उनकी माला पहनाएगी, उनके पास बैठेगी, उनके लिए गाना गाएगी, भोग लगा ऐसे करती थी। लेकिन उनका उम्र हो गया शादी का, उनको शादी का उम्र हुआ तो उनका गोपाल सिंह करके करौली के राजा थे तभी, उनके साथ में शादी हुआ, जो जय सिंह जी के बेटी थे राजकुमारी उनके दामाद बने कौन करौली के राजकुमार राजा जो थे गोपाल सिंह जी, उनके साथ शादी हुआ। शादी हुआ तो वो तो शादी के दिन भी जाती थी उनके पास, वो तो अड़ गई, बोला पापा मुझे भेजना है तो मेरे ठाकुर जी को लेकर जाना। बोले तू किसे लेकर जाएगा, मैं उनको यहाँ से वृंदावन से लेकर आया हूँ, सेवा पूजा मैं करूँ, तू किसे लेकर जाएगा। वो उनके पिताजी भी भक्त थे, वो नहीं देना चाहते थे। बोले गोस्वामी सेवित विग्रह ये क्या लेगा, उनके सास घर में ले जाए क्या करेगी वो सेवा पूजा, तो नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो तो रोने बैठी विदाई के दिन, बोला मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो लेकर के जाऊँगी, बहुत अड़ करके बैठी। तब राजा जय सिंह ने बोले वो क्या करेगी, उनको कुछ विग्रह देना चाहिए, बेटी है क्या है वो सेवा करेगी। तो उनने शिल्पी बुला करके बोले ठीक है कुछ दिन रहो मैं व्यवस्था करता हूँ। जयपुर में तो एक से एक मूर्तिकार हैं पत्थर बनाने वाले, हूबहू मदन मोहन जी का विग्रह तीन बना दिए उनको देख करके, एग्जैक्ट सेम विग्रह। बोले देखो मैं तीन विग्रह से जो है आपको पसंद करो एक ले जाओ। बोले असली तो रह जाएगा, वो क्या पहचानेंगे, कोई एक ले जाए ले जाए खेलेगा मजाक कर। तीन विग्रह तो उनको राजकुमारी फंस गई, बोला मुझे तो वही चाहिए, वही दी मदन मोहन चाहिए, ये पता नहीं पिताजी तो इसे कर दिए पहचान भी नहीं आएगा। तो जब बना रहे थे विग्रह शाम को जा करके देखी, बिल्कुल देखा कि सेम सेम है, और रात भर आकर रोने लगी। बोले प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, लेकिन अब मैं पहचान नहीं पाऊँगी, कैसा हो जाएगा, पिताजी ने मुझे ठग देंगे, तो कुछ ऐसे उपाय करो, मैं आपको पास रहना, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो मदन मोहन फिर स्वप्न में राजकुमारी के बोले कोई बात नहीं, जब आपका टेस्ट में भेजेंगे कौन सा पहचान लो, जिसको पहचानेगा ले लेना, तो देखना तीनों तो बिल्कुल सेम है ना, सेम है किसी को ना आप किसे पहचानूंगी ना, मैंने आपने बाएं हाथ का जो बांसुरी बना एक छोटे अंगूठी को कनिष्ठ अंगूठी को ऊपर उठा दूंगा, अब देख लेना जिसका अंगूठी ऊपर उठा होगा वो मैं हूँ, बाकी किसका उठा नहीं किसी की नज़र नहीं है तेरे, मैं तुझे बता दिया नुक्स। तो उन्होंने आई सीधा, जब बोले कि तीनों से किसी को चूज कर लो कोई एक ले लेना, वो सीधा आकर तीनों में नज़र डाली, देखा कि एक का ये छोटे अंगुली उठी हुई, बोले मुझे वही चाहिए। अब सारे पंडित राजा चौंक रहे, बोले ये किसी पकड़ लिया उनको, क्योंकि उनका नाता उनके साथ है। तो फिर मदन मोहन को लेकर के राजकुमारी ने लेकर आई, तो राजभवन में यहाँ रखी। इस प्रकार से जयपुर से फिर करौली आए, आकर यहाँ सेवा पूजा हुआ उनका, वहाँ मंदिर बना करके उनका सेवा पूजा हुआ। उनका कई प्रकार की और इलाके वर्णन है, एक मुसलमान सूबेदार था, उनके साथ भी बहुत सुंदर लीला है, जो अब जो दरवाजे पर बैठे थे उनके सामने, उसके पीछे है उनके टीला, वो भी वहाँ से आकर दर्शन करते थे। बड़े भक्त हो गया था उन्होंने मदन मोहन जी का। तो इस प्रकार मदन मोहन जी करौली में आकर के सनातन गोस्वामी के सभी विग्रह वहीं रहे। लेकिन आप देखें दो विग्रह हैं इधर, एक मदन मोहन और एक मदन गोपाल। तो मदन गोपाल वही मदन गोपाल के रूप में जो थे अद्वैत आचार्य के प्रकट हुए थे, लेकिन फिर मदन मोहन हो गए थे, एक ही हो गए थे। लेकिन अद्वैत भट्ट ने जो सेवा पूजा किया था तो वो तो सेवा पूजा करेंगे, तो उन्होंने मदन गोपाल नाम में विग्रह सेवा पूजा करने लगे। तो जब विग्रह ट्रांसफर हुआ था तो वो भी आ गए थे इधर मदन मोहन के साथ में, वो भी मदन मोहन के साथ में गए, तो इसलिए उनके साथ में उनका सेवा पूजा हो रहा है। लेकिन अभी वो जो तीन अल्टर देखा आपने मार के, एक अल्टर बंद था, इसी बारे में बताया आपको। वो अल्टर इसलिए बनाया गया था, वहाँ के राजा का वैसे है, राजा रानी की नहीं, हमारे यहाँ के जो रानी साहिबा होंगे ये सब अशुद्ध, घर के बाहर में विवाहित लोग लड़कियाँ घर के बहू बाहर नहीं जाएंगी, ऐसे नहीं होते, किसको ऐसे दर्शन देंगी मिलेंगी ऐसे नहीं। घर के शादी का बहू है वो सबके सामने थोड़ी जाएगी बाजार में, हट नहीं जाएगी। तो इसीलिए वो जब तो राधारानी आ चुके थे, मदन गोपाल के साथ राधारानी थे, वो राधारानी थे उनके साथ में राजा लेकर आया था। लेकिन वहाँ जो राज के भाव सेवा करने लगे, उनका राजपाट में राजवाड़ा में ये लोग नहीं है, वो नवबधू वो कैसे सबके सामने दर्शन देंगे। तो ऐसा करके व्यवस्था राजा ने कर दिया, बोले एक अल्टर एक्स्ट्रा बनाओ। तो इसलिए लास्ट अब देखे राइट साइड में अल्टर बना, वो मदन गोपाल के साथ जो राधारानी थे, मदन मोहन का जो राधारानी, दोनों को ला करके वहीं रखते थे। दिन भर दर्शन बंद रहेगा, अंदर रहेंगे, वो बहू है ना, दर्शन नहीं देंगे, अंदर रहेंगे दिन भर। शयन आरती में उनके राधारानी मदन गोपाल के पास आएगा, मदन मोहन शाम शयन आरती में दर्शन होगा ठाकुर जी के साथ। और जब मंगला आरती में दर्शन हो, मंगला आरती के बाद फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने घर में, कवाड़ बंद, फिर दर्शन बंद, फिर ऐसे खाली रहेंगे। लेकिन आज आप दर्शन के उनके साथ में, क्योंकि अल्टर का रिपेयरिंग चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए आपके साथ में दर्शन हो गया। नहीं तो उनका प्रथा है आप बाद में कभी आएंगे, लेकिन पहले भी कोई आए होंगे देखेंगे, क्यों खाली खाली देखेंगे, केवल मंगला में या शयन में राधारानी के साथ मिलेंगे, वो फिर उसी से अलग भी हो जाते हैं, उनसे हटा कर अलग, दोनों को अलग कर देते हैं, ऐसे रखते थे। तो इस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था है। तो इस प्रकार जिस जैसे जैसे कहते हैं, यू हैव टू फॉलो दी लॉ ऑफ द लैंड, जिस जगह में जाएंगे उस एरिया के जो नियम है पालन करना पड़ेगा। जब राजाओं के परिवार में आ गए तो राजवाड़ा का जो नियम जो वही नियम से चलना पड़ेगा, वो क्या करें। इसलिए आप देखें ना, लोग जो जाते हैं किस प्रकार के भजन गाते हैं, ओ बिल्कुल अपने रजोगुणी भाव से, उनका तान अलग है, उनका टोन कुछ अलग होता है, उनकी भाषा में उनके टोन में गाएंगे। गोविंद जी में यहाँ भी सेम प्रकार से हो हल्ला करके अपने गाएंगे, वही उनको पसंद है, और क्या करें। जो उसी घर में आए तो उसी प्रकार से चलना पड़ेगा, है ना। नहीं बेटी शादी होकर जिस घर में जाएगा उसी घर का रीति नीति से चलना पड़ेगा। तो यहाँ जो आए राजस्थानी रीति नीति भी राजवाड़ा नीति नीति में चलना पड़ता है, वही हिसाब से भजन कीर्तन चलता है। लेकिन सेवा पूजा गोड़ियों का रखें, गोड़िया धारा में सेवा ग्रहण करते हैं, भले यहाँ रहे आकर के। तो इस प्रकार मदन मोहन जी आकर के वहाँ करौली निवास करने लगे, और गोविंद गोपीनाथ जयपुर में रह गए, और जो अपना अपना स्थान सब चुन लिए, विनोद लाल अपना ले लिए, दामोदर माधव सब अपना अपना जगह में चले गए, गोविंद देव जी केवल राजा बनकर राजभवन में अभी हैं, बाकी सब अपना अपना स्थान ले लिए, इस प्रकार हैं। तो ये इस प्रकार से मदन मोहन की प्राप्ति और सनातन गोस्वामी के द्वारा सेवा और उनके किंवदंती बताओ। तो सत्ययुग में पता नहीं कहाँ कहाँ टूर करके आए जी, विग्रह को देखें, उसे मथुरा नहीं, स्वर्ग लंका भीषण कहाँ कहाँ अयोध्या कहाँ से टूर करके फाइनली करौली में आकर बैठे आप लोग की कृपा करने के लिए। उनका हिस्ट्री तो सबसे बड़ा है। जब बज्रनाभ के विग्रह के गणना किया जाता है तो उसी मदन मोहन विग्रह नहीं है, मदन गोपाल बनाए थे लेकिन मदन मोहन नहीं है उसमें, क्योंकि साखी गोपाल सारे विग्रह को बनाए थे 16 विग्रह में, कि मदन मोहन तो बज्रनाभ आने से पहले ही, वो कितने वो द्वापर से कई युग पहले से थे, वो अम्बरीश के सेवित, इंद्र के सेवित, ब्रह्मा के सेवित, रावण के सेवित, विभीषण के सेवित, सीता जी के सेवित, राम के सेवित, शत्रुघ्न के सेवित, कुब्जा के सेवित, वो कितने कितने टूर करके, कितने प्लानेट, कितने भक्तों की सेवा कृपा करके आए हैं, फाइनली यहाँ बैठे। अभी बैठे यहाँ तक आने के लिए भी आप कितने तपस्या करना पड़ता है, यद्यपि आप वीडियो कुछ पुश बैक सीट बस में आए, लेकिन फिर भी आपको लगा होगा ना 4 बजे से लेकर 9 बजे तक तो धक्का खाना ही पड़ा, ऐसे रास्ता है, घूमें फिरे कैसे आके यहाँ बैठे हैं छिप करके। यही है भगवान, हमारे भगवान कृष्णा स्वरूप से टेढ़ी है, स्वभाव से भी टेढ़ी है, सीधे नहीं है। भगवान राम बड़े सरल है, सीधे सदा, लेकिन कृष्ण बड़े टेढ़ी है। एक बार एक बाबा ने वृंदावन में रहते थे, भजनानंद महात्म है, कृष्ण भक्त थे, तो कब मन में है तो अयोध्या गए थे दर्शन में। अयोध्या में जा करके कृष्ण नाम भजन कर रहे थे, कोई उनको रामानंद मिल गए, बोले अरे बाबा ये टेढ़ी का क्यों भजन कर रहा, क्या मिलेगा तुझे, अभी कभी किसका हुआ, बड़े टेढ़ा है, कभी किसका नहीं होता वो, हमारे सीधे सलोने सरल के पुरुष है भगवान राम, कितने सीधा है, खबरदार ऐसा मेरे प्रभु का नाम ना, क्यों क्यों टेढ़ी बोलते हैं उनको ना बताओ, टेढ़ी नहीं बोलूँगा क्यों बोलूँगा ना, क्यों टेढ़ी बोलूँगा ना बताओ, वो क्या सीधा है, जाकर देखो तीन जगह में टेढ़ी तो है ही, ऐसे देखने में स्वरूप उनका टेढ़ी है, काम भी सब टेढ़ी है। अब भैया अच्छा ठाकुर जी चोरी चोरी बचपन से चोरी करने लगा है ना, नहीं भाई चोरी करे भाई, क्या चोरी करने का वस्तु चोरी करे है ना, नहीं एक तो बचपन से चलो माखन वाखन चोरी करके खाया, जो गड़बड़ हुआ कोई बात नहीं, छोटी मोटी होकर कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन कपड़ा चोरी किया भाई, कोई कपड़ा किसी को चोरी करना है, एक तो जेंट्स है, लेडीज़ का कपड़ा क्यों चोरी किया, लेडीज़ गारमेंट वो भी यूज टू क्लोथ, सेकंड हैंड क्लोथ भाई, चोरी करना था नया कपड़ा चोरी करना चाहिए था, यूज टू क्लोथ पर लेडीज़ गारमेंट चोरी कर रहा है, मतलब इसी बदमाश है, रिकॉर्ड ख़राब, सब काम भी टेढ़ी है उसका, शादी भी किया तब भी टेढ़ी, सीधे से शादी नहीं किया ना, चोरी करके उठा के झगड़ा कर उठा भाग गया। सब काम टेढ़ी है उसके, तो इसे समझा दिया तो बोला सही में अरे स्वरूप टेढ़ी, स्वभाव टेढ़ी, काम भी टेढ़ी, सब टेढ़ी, बोले मैं फंस गया टेढ़े का था तो हमने, तो फिर राम राम भजन करने लगा, आया आ करके ठाकुर जी के वृंदावन, बोला तुम ये झोली वाला रखो, मैं तो जा रहा हूँ अयोध्या, बोले क्यों, बोले तुम ऐसे टेढ़ा हो यार, तेरे सामने हम सीधा सीधा राम सहु वो सीधा सरल है, बड़े अच्छे हैं, बोले अरे सुनो तो सही, सुनो ना क्या बात ना, टेढ़ी तो हूँ जरूर, लेकिन टेढ़ी क्यों समझ लो तुम, क्या टेढ़ी बताओ, और वो सीधे से आप टेढ़ी का क्या महत्व ज़्यादा है, सीधे आदमी अच्छे होते, आप टेढ़ी हो इसे, बोला आप बताओ, मैं एक बात तुझे बताता हूँ, तू चला जाना ठीक, कोई बात नहीं, ये मुझे समझा कर चलाना क्या, बोले थोड़ा मुझे पानी पीऊँगा, और तभी जमाने तो कुआँ होता था, जो पाइप अगरह तो नहीं होता था, टैप अगरह, तो कुआँ से पानी निकाल मुझे दे दो, तो पानी निकालना कर लोटा में रस्सी बांध करके डाले तो गिरा दिए, बोले गिर गया लोटा से, तो उसको उठाओ, तो हाथा ना पकड़ लोटा बाल्टी उठा लेते, बोले उसको उठाओ, लेकिन एक सीधा उठाना मेरा, लेकिन टेढ़ा नहीं होना, टेढ़ा नहीं होना, हाथ ऐसे नहीं करना कि कमरा नहीं टेढ़ा करना, सीधा सीधा उठा दो, वही तो दिखाई पड़ता है, उठा दो सीधा, उठा ना सके, आप उठा सकते हैं कोई सामान को नीचे उठाएंगे, हाथ सीधा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, कोशिश करने का बोला नहीं होगा ना, तो फिर अभी समझ में आ रहा है कि सीधा आदमी से कुछ काम नहीं हो सकता, सीधा आदमी किसको उद्धार कर सकता, टेढ़ा बिना हुए उठाएगा कैसे, जितने पतित लोग गिरे हुए हैं उनको कोई उठाएगा तो टेढ़ा होना ही पड़ेगा, सीधा सीधा किसी को उठा नहीं सकते, वो अपने सीधा रहेंगे लेकिन उठाने का काम तो टेढ़ी करेगा, तो इसलिए मैं टेढ़ी हूँ तो उठा रहे हैं आप लोगों को, तो बोला हाँ जय हो, जय हो आपकी, तो इसलिए फिर हमारे टेढ़ी भगवान है तो यहाँ आकर के बैठे हैं, तो इसलिए कहाँ कहाँ घूमें फिरे किस प्रकार से लाओ, यहाँ जा कर के दर्शन दे रहे हैं। तो उनका जो हमारे गौड़ीय सिद्धांत के मदन मोहन को जो पूजा किया जाता है सिद्धांत शिक्षा के अनुसार, वो है संबंध के देवता। जैसे मैं कहा संपूर्ण वैदिक साहित्य का तीन तात्पर्य होता है शिक्षा, एक संबंध, एक अविधेय, एक प्रयोजन। उसका अर्थ समझते, संबंध क्या है, संबंध कहते हैं रिलेशन इंग्लिश में कहते हैं संबंध, अविधेय कहते हैं उपाय को, और प्रयोजन कहते हैं जो लक्ष्य है। तो संपूर्ण वेद शास्त्र में सारे शिक्षा का यही तीन विषय है। तो श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो सनातन जी को शिक्षा दिए, ले देकर के तीन विषय पर शिक्षा दिए, तीन विषय में, तो जो प्रथम ठाकुर संबंध का विधेय मदन मोहन को बताया, बोले वो है संबंध का ठाकुर, आप किसको सेवा करना चाहता है, बोले सारे वेद शास्त्र में प्रतिपाद्य विषय है कृष्ण, कोई जीव मुक्ति पाना चाहता है इस बंधन से, इस संसार से, इस कर्म से, तो एकमात्र होता उपाय है भगवत सेवा, बिना मुक्ति नहीं हो सकता, सारे साधु संत महंत एक साथ में शास्त्र सब कहते हैं हरि की सेवा के विराम कर। जो हरि की सेवा है वो ये अभिधेय। लेकिन सेवा कैसा करूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, नहीं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं कुछ नहीं जानता, कैसे सेवा करूँ? पहले आपको जानूंगा पहचानूंगा आप क्या चाहते हैं, गर्म चाहते हैं कि ठंडा चाहते हैं, मीठा खाते हैं कि नमकीन खाते हैं, तब तक तो कोई सेवा करूँ? नहीं से जानते ना कैसे सेवा करूँ, मनमानी हो सकता क्या? नहीं, पहले जान पहचान थोड़ा संपर्क संबंध होगा तब तो सेवा बनेगा ना। तो इसीलिए जब भगवान सर्ववैद्य की प्रतिपाद्य वस्तु है लेकिन उनके सेवा भी यदि माध्यम है तो सेवा से करने से पहले संबंध स्थापित होना जरूरी है, जानना जरूरी होगा कि कौन है, आप कौन है, वो कौन है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार। जो संपर्क साधन संबंध का असली अर्थ है सम्यक बंधन। बंधन कैसा? न वो ऐसे बंधन जो अनादिकाल से है, अब था, अभी है और रहेगा, कभी मिट नहीं सकता, अविच्छेद्य बंधन। कैसे? जैसे आप क्या बताओ, नमक, नमक सब जानते हैं ना, नमक का जो धर्म है उसका जो जुड़ाव है किसके साथ, नमकीनपन, नमकीन समझते ना, खारापन, हाँ जो नमकीन लगता है। अरे आप गुजराती, आप तो मिठाई बोलेंगे, अरे गड़बड़ हो गया, ये उदाहरण तो चलेगा नहीं। मैं गलती कर दिया, आप लोग तो नमक मिठाई बोलते नहीं। चलो, तो पानी है, जैसे पानी का सम्यक बंधन, पानी का जो संबंध है धर्म है वो तरलता है, क्या है, लिक्विडिटी। पानी हमेशा तरल है ही है, कोई कठिन पदार्थ को पानी कहेगा नहीं, तरल पानी जैसा है, दूध पानी जैसा है, क्योंकि लिक्विड है, तरल है, इसलिए पानी को तरल। तो इस प्रकार पानी का तरलता के साथ जो संबंध है सम्यक बंधन, वो कभी अलग हो सकता? अगर पानी से तरलता को अलग कर दिया जाए उसकट तो क्या पानी कहेगा उसको? नहीं कहेंगे, उनका वस्तुत्व ही लोप हो जाए, अस्तित्व ही लोप हो जाएगा। ठीक इस प्रकार कोई व्यक्ति कोई वस्तु का इतने संबंध बंधन जिसके साथ हो, जो बंधन को मिटा ना जा सके, अलग नहीं किया जा सके, हमेशा था है और रहेगा, वो बंधन को सम्यक बंधन कहते हैं, उसको कहते संबंध, यही संबंध है उनका। जैसे पानी का लिक्विडिटी तरलता का संबंध है, तो ऐसे प्रत्येक जीव का प्रत्येक मनुष्य का जो संबंध जिसका साथ है वही संबंध है, ऐसे बंधन जो था है और रहेगा कभी नहीं मिट सकता, हमेशा उनके साथ रहेगा। अगर पानी हमेशा तरल है लेकिन कभी कभी जब वो टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ठंडा पड़े, माइनस टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता ना, नहीं तो धर्म छूट जाता ना, नहीं तरलता टूट करके अभी कठिन हो जाता है, तब इसको पानी कहते हैं, अब नहीं क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं, बर्फ कहते हैं, फिर पानी नहीं, जल नहीं कहेंगे। लेकिन वो बर्फ़ रहेगा कितने दिन, जब धूप उठेगा तब अपने आप पानी हो जाएगा, वो टिक नहीं सकता, वो टेम्परारी है। ठीक इसी प्रकार हम जो जीव है, जितने भी मनुष्य है, जितने भी जीव है, उनका सम्यक बंधन असली संबंध कृष्ण के सेवा के साथ है, हम उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ हम नित्य संबंध है, नित्य संपर्क उन्हीं के साथ है। लेकिन कभी कोई परिस्थिति में आ करके, परिस्थिति क्या है, मैं खुद भोगना चाहता हूँ थोड़ा सुखी होना, इस प्रकार से मौके में बेवकूफ़पन में आ करके, धोखे में आ करके हम इस संबंध को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। इसलिए जैसे पानी अति ठंडा के कारण कठिन हो जाता है, पत्थर होता, तो इस प्रकार हम इसी के कारण, इसी बेवकूफ़ी के कारण हम आज उनसे संबंध को भूल करके हमको भोक्ता मान बैठे हैं। ये दशा, ये जो बद्ध दशा हमारा है वह है, लेकिन ये बद्ध दशा टिकाऊ नहीं है। जैसे गर्मी आए तो अपने आप ही बर्फ मेल्ट होकर पानी की पानी हो जाए, जैसे हरि मंथन हो जाए, असलियत पता चले, ज्ञान उदय हो जाए, तो फिर अपने आप कृष्णदास तो बन जाएंगे, मायादास छूट जाएगा, है ना, नहीं तो ये संबंध, तो जो भूले हुए संबंध को फिर उनके साथ जोड़ने के लिए, असली संबंध को संबंध से जोड़ने के लिए जो अभिधेय है, जो ठाकुर हैं, वो ही मदन मोहन। हम जितने संसार में बद्ध जीव है, जो भगवान से विमुख हो चुके, भगवान से भूल करके अपना सुख के, इंद्रिय सुख के लिए इसको पड़े हैं, तो यही हमको कहते हैं बद्ध जीव, नित्य बद्ध जीव। नित्य बद्ध का उद्धार शुरुआत होता है संबंध से, फिर जाकर सेवा करेंगे, संबंध होने के बाद सेवा होगा। तो फिर मदन मोहन क्यों चले, और भगवान के अनेक नाम है, मदन मोहन ही संबंध के ठाकुर क्यों बने? तो उसका उत्तर में कहते हैं मदन मोहन इसलिए बने कि पूरे चराचर संसार में जो भगवान को छोड़ करके यहाँ हम लोग जो संसार में दुनिया में जो रहते हैं, हमारा रहने का सभी प्रकार काम का चेष्टा का एक ही लक्ष्य है, क्या है? हम सुखी होना चाहते हैं। क्या? सुखी होना चाहते। इसीलिए जावतीय कर्म जावतीय चेष्टा करते हैं, वी वांट टू बी हैप्पी, सुखी होना चाहते। लेकिन सुख का तात्पर्य आप सभी अपने आप को पूछ कर देखो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हम अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर के अतीत वर्ल्ड में भी जितने मनुष्य राजा राजोड़ा भिखारी कंगाल पर्यंत सभी असली सुख सबसे श्रेष्ठ सुख इसको मानते हैं, काम सुख को। इसी को ही आत्यंतिक सुख दुनिया के बद्ध जीव मानते हैं। इसी को कहते हैं कामदेव का नाम है मदन। क्या है? मदन को कामदेव कहते हैं, कामदेव का नाम मदन। तो इस संपूर्ण संसार मैथुनागार शास्त्र में कहा गया है, कामाइतम इदम जगत, केवल काम चक्कर में फंसे हुए हैं, इसलिए खाते हैं, इसलिए सेविंग करते हैं, इसलिए कपड़ा पहनते हैं, सारे के लक्ष्य ले देकर इसी में है और कुछ नहीं, सब इसी के पीछे। तो इसलिए जो मदन के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड जगत मोहित है, तो ये मदन से जब छूटेंगे, काम से प्रभाव से छूटेंगे, तब तक कृष्ण के पास आएंगे। उसी फंसा कर रखा है, छोड़ता नहीं, ऐसे फंसा कर रखा। तो इस मदन से काम के प्रभाव से कैसे छूटेंगे? जो इससे बड़ा पावरफुल आकर्षण होगा वही छुड़ा सकता है, तो वो है मदन मोहन। मदन मोहन का नाम, मदन मोहन का नाम जब ही पड़ा, एक ऐसी घटना हुआ था, जब भगवान ने द्वापर में आए थे तब कृष्ण बोल रहे थे उनको, ब्रजेंद्र नंदन 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 कृष्ण। तो एक बार नाराज जी आए, आकर कृष्ण के खूब ब्रजन भजन आकर के चले गए। जा रहे थे तो कामदेव अपना पंच सर ले काम बाण लेकर घूम रहा था। वो बोल रहा था कि मैं तो सबको विजय किया हूँ, सब कोई नहीं, जो आया सबको सबको पटकाऊँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी सब ऐसे हारे मेरे सामने। वो जा रहा था, नारद जी गुजर रहे थे, हंसते हंसते नारद जी को नज़र पड़ा कामदेव का, मदन जी का। बोला अरे ये बड़े खुशी देता है, वो क्या मेरे से? तो बंदूक लगाया काम बाण उनको। नारद जी बोले भैया मैं बेचारी बैरागी कि मुझे मेरे ऊपर क्यों बस नज़र डाल रहा है? नहीं तू बोले देखो मुझे जितने से मैं पहले से हारा हुआ हूँ, भिखारी है, मेरे ऊपर क्यों, मुझे जितने से क्या मिलेगा तुझे ना, और क्या, मैं जगत विजय हमें मानता हूँ। तू अगर सचमुच त्रिपुर विजय तीन लोग के विजय माना जाते हैं, मैं एक एड्रेस बताता हूँ एक आदमी का, अगर उसको तू घायल कर दिया अगर जीत लिया तब सचमुच माना जाएगा कि तू, मुझे मानने से क्या, मैं तो ऑलरेडी हरा हुआ, मुझे जीतने से क्या है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बदनाम होगा तेरा ना, फिर किसको ना। अरे मैं एक ऐसी व्यक्ति का नाम बताता हूँ सारे दुनिया में लोग उनको जानते हैं, अगर उसको तू जीत लिया तब तो मानो कि दुनिया में तुझे माना जाएगा, तू जगत विजयी है। मतलब बताओ अभी चलता हूँ, कौन है मेरे से जीत जाएगा, मेरे से बच जाएगा? तो उनको एड्रेस बताया, बोला नोट करो एड्रेस। बोला एड्रेस है, सबसे पहले उनका एड्रेस है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जाना, जमुना पार करके जो उनका रेसिडेंस है वृंदावन है, लिखो क्वार्टर नाम, रहने का जगह का नाम है वृंदावन, जमुना के किनारे, सुंदर जमुना धार उसके, और वन में रहता है वृंदावन, वन में रहता है। कैसे ना बोलो, अकेला अवस्था कैसे देखने के लिए सर? बिल्कुल किशोर अवस्था, बिल्कुल 12 साल से 16 साल के उम्र के चेहरा के हिसाब से रहता, दाढ़ी मुझ कुछ उठाई नहीं, ऐसे सुंदर चेहरा है, अकेला वन में रहता है और जमुना के किनारे रहता है। बोले अरे तो ऐसे तो वर्णन करता है, तो ऑलरेडी जो मैं जिनको घायल करने का जो व्यवस्था करता हूँ, ये व्यवस्था तो वही है, मैं सुंदर उपवन लेता हूँ, मलय पवन लेता हूँ, सुगंध द्रव्य लेता हूँ, म्यूजिक लेता हूँ, इस प्रकार व्यवस्था से किसी को फंसाता हूँ। ये तो जो बोल रहा है कि ऑलरेडी फंसा हुआ है ना, सुनो तो सही, वो इसी रूप में रहता है, वो करता क्या, नाचता है, नाचता है, नाच कैसे अकेला, नहीं अकेला नहीं नाचता है, कोई पुरुष नहीं उनके साथ में, अकेला पुरुष तो कुमार वही है और ये अनगिनत युवती उनके साथ में। बोले यारे वो तो फिर हारा हुआ है, फंसा हुआ है ऑलरेडी, मैं क्या फंसाऊंगा उसको ना, नहीं आप उनको जाओ ना एक बार गोली आपके बाण लगाओ, अकेला है, निर्जन वन में रहता है, सुगंधित पुष्प में वन में, और रात आधी रात में भी, और इतने युवतियों के साथ में नाचता भी और गाता भी, कैसे नाचना गाता, कोई केवल नाचना गाना नहीं, बजाता है म्यूजिक, कौन सा बांसुरी बजा करके नाचता है गाता है उनके साथ अकेले घूमते। बोले वो तो बिल्कुल फंसा हुआ है, उनको क्या फंसाना है, ये तो ऑलरेडी घायल है। बोले नहीं, इतने करते हुए भी वो फंसा नहीं, आप जा करके आपने पूरे पांच गोली लगाओ, पांच बाण लगा करके उनको अगर घायल कर दो तब मैं मानूंगा तो दुनिया में विजय माना जाएगा। तो बोला अभी जाता हूँ, क्या वास्तव इस प्रकार स्थिति में जो है उनको तो ऐसे बाएँ हाथ का खेले, वो तो बाएँ हाथ का खेले, उसको क्या हटाना। तो मदन जी आपने पूरे राइफल लोड करके लेके गए, सीधा वहाँ से फ्लाइट ले लैंडिंग, सीधा वृंदावन में लैंडिंग किए। और शाम के समय था, वेट किए थे आधी रात में, सारे गोपियों के बीच में कृष्ण आ गए, रास्ते में देखा, वो देख कर बोला रही उनको गोली मारना भी है क्या, तो बोले नहीं फंसे हुए लेकिन लेकिन फिर नारद जी ने बताए। तो जब उनको निशाना बना रहा था वो निशाना, वो नाच रहे नटवर नागर नाचते रहे, अभी गोली चलाऊँ बाण चलाऊँ लेकिन वो बदल जाते हैं, गोपी आ जाते हैं, कृष्ण चले जाते हैं, तो होता नहीं, फिर वेट करता है, ऐसे निशाना लगाता लगाते अभी गोली लगाऊँ कि तो फिर चले जाते हैं, बनता नहीं। पूरा रात निशाना लगाया, फायरिंग नहीं कर पाया, दूसरे रात लगाया नहीं कर पाया, तीन रात निशाना लगाने में लगा। अरे आप लोग बताओ, जो लंबा समय तक तीन तीन रात भगवान के ऊपर जिसको निशान लगा था ना, पूरा एकाग्र मन बुद्धि चित्त इंद्रिय सारे एक होता ना इसको, तो पूरे मन बुद्धि इंद्रिय जिसके ऊपर लगा गया, कृष्ण के ऊपर को लगाए इतने समय अष्ट प्रहर तक 24 घंटा 72 घंटा तक, क्या दशा होगा कृष्ण भक्त हो जाए ना। तो बेचारा स्वयं सेंसेस होकर गिर पड़ा, बंदूक फंदूक साथ में राइफल के साथ गिर पड़ा फेंट होकर के। तो उनको आकर उठा, क्या होगा, वो स्वयं जिसको मोहित करने आया था मोहित नहीं कर पाया, स्वयं मोहित होकर गिर पड़ा। तो इसी लीला में वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, जमुना थार पर जब मोड़ लेते हैं रमन रेती में, उस स्थान वही लीला वहीं हुआ था, उस स्थान का नाम आज ही मदन टेर कहते हैं, वहाँ एक कदम रखे है, वहीं पर खड़ा होकर नज़र लगा रहा था, नज़रिया लगा रहा था, निशाना लगा। तीन दिन के बाद संश्लेष होकर गिरा तो उनका नाम मदन टेर से मदन मोहन हुआ, कि मदन भी जिसका द्वारा मोहित हो गया वो है मदन मोहन। तो भगवान का नाम उस लीला से पड़ा मदन मोहन, जो साक्षात जगत को नचाता है, हर प्रकार से सबके बुद्धि को घायल किया है, बुद्धि की डाउन किया है, वो जो कामदेव जो मदन है उनको भी जो मोहित किए हैं, तो है भगवान कृष्ण मदन मोहन। मदन मोहन सभी प्रकार के काम विषय को स्वयं जीत सकते हैं, तो उन्हीं की कृपा से काम विषय को जीता जा सकता है, इसलिए मदन मोहन। इसलिए असली संबंध जब उनसे होगा तो हमारे संसार से संबंध छूटेगा, उनके संबंध होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम आराध्य देव है मदन मोहन, तब इस काम विकार से हम छूटेंगे, तब फिर आगे कुछ भक्ति कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक भक्तों का सर्वप्रथम आराधना सर्वप्रथम सेवा का विषय होना चाहिए, मदन मोहन का विषय। इस काम विकार से हम बचें तब जा करके कुछ हम कर सकें सेवा पूजा, नहीं तो उसी के लपट में रहकर तो कुछ कर ही नहीं सकते, फंस रहे हैं। तो इसलिए प्रथम विग्रह जो है संबंधादि अभिदेव से मदन मोहन विग्रह, तो उनके सेवा के रूप में सनातन गोस्वामी हमारे गोड़ियस भक्तगण को ये दिए हैं कि सेवा के भक्ति के शुरुआत में सर्वप्रथम मदन मोहन विग्रह की आराधना करना चाहिए, उनके कृपा से फिर आपने इस काम से बच सकते हैं, फिर काम को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, काम कृष्ण सेवार्पणे उनमें लगाएंगे। तो इस प्रकार मदन मोहन विग्रह को आप पहले दर्शन किए, तो इसके बाद में अभिधेय विग्रह हैं गोविंद देव। उपाय है, गो माने इंद्रियां, इंद्र होता है मालिक, गोविंद इंद्रिय के मालिक, वो इंद्रिय के मालिक संपूर्ण इंद्रिय के द्वारा उन इंद्रिय के मालिक जैसे सेवा जब करें वही होता है भक्ति। भगवान के सेवा में संपूर्ण इंद्रिय के लगाओ वही होता है भक्ति सेवा, उसी के अधिकारी है गोविंद देव, वो सेवा के मालिक है। और उसके बाद में अगर इस प्रकार काम लोभ से बच करके संपूर्ण इंद्रिय से भगवान की सेवा करो, गोविंद की सेवा करो, तब जो आपकी परम इच्छा क्या प्राप्त होंगे, गोपीनाथ प्राप्त हो जाएंगे, वही सिद्धि है, वही सबके प्रयोजन है। इस प्रकार से तीन ठाकुर तीन आवश्यकता के मूर्तिमंत विग्रह के रूप में पूजा पाते हैं। तो आज आप आज एकादशी के पवित्र भगवान की तिथि में आज उनके आप दर्शन शुरू किए सुबह सुबह मदन मोहन की, और हम आशा करते हैं कि आप सोने से पहले बाकी अविधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह के दर्शन आप कर लेंगे। मुझे पता चला कि कल आप गोपीनाथ दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आज पहले से गोपीनाथ में मत चला जाना, सीरियल यही है, गोविंद के बाद गोपीनाथ जाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से सीधा, आज फास्टिंग है, खाने पीने के चक्कर जो यहाँ कुछ अगर करेंगे जलपान करके सीधा गाड़ी में बैठो, सीधा गोविंद जी के मंदिर के अंदर पार्किंग में, सिटी पैलेस के अंदर बस पार्किंग करो, गोविंद जी के दर्शन करो। वो पीछे गेट से काल जी हमें कथा कर रहे थे ना, उसके पीछे से गेट है, जो चल कर जाए जाए, नहीं तो नहीं ऑटो पकड़ो, सीधा गोपीनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद फिर अपने स्थान में आओ। तो आज का कोटा आपका पूरा होगा और आज आपका लास्ट दिन का टूर है। कल फिर हम, आज रात से हम अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, है ना। नहीं अगर रात को फिर समय होगा तो कुछ आलोचना चर्चा का फिर करेंगे, नहीं तो फिर इसके लिए इति है, इस टूर के लिए। किसका कोई प्रश्न है? नहीं तो 2 बजने वाला है, अभी निकलेंगे। ठीक है, कोई किसी को पूछने का नहीं है। नहीं, हमारे से दिखाने के लिए किए, उनको तो उनके लोग थे, वो उनके लिए नहीं कर रहे थे, हमारे लिए किए। हम जैसे बद्ध जीव फिर कैसे करेंगे, है ना, उनके लिए दे गए। वही ये अभी देख रहा है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है ना, ऊपर जाने का प्रक्रिया करेंगे। अब कहाँ गए रामकेश? जो आपको पानी वानी डिस्ट्रीब्यूट सिकंजी अगर करना था कर दीजिए, अब लोग चलेंगे, है ना। समय कम है, नहीं तो और भी कुछ चर्चा करते, लेकिन अभी हमको जाना भी है और अभी तो बंद हो गए, विग्रह खुलेगा। टाइमिंग बता है ना, 5:45 कल गए थे ना, 5:45 गोविंद, और उसी के 15 मिनट के बाद गोपीनाथ।